Hare Krishna. श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज भक्ति के अंगों का वर्णन करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन इत्यादि। ये ऐसे अंग हैं भक्ति के जिनके द्वारा हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद अपने प्रवचन में समझाते हैं कि अगर कोई 9 अंगों को नहीं कर पाता तो थोड़े कम भी करे, 8 करे, 7 करे, या केवल एक भी अंग का अगर पालन करता है तो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बड़े शक्तिशाली अंग हैं श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव में, जिस चेतना में हम अपना ये कलेवर, अपना देह छोड़ते हैं, उसी भाव को प्राप्त करते हैं। और वो भाव कैसे उत्पन्न होता है? हम जो कार्य जीवन भर करते हैं, श्रीमद् भागवत में ही 11वें स्कंद में एक अवधूत ब्राह्मण की कथा आती है। ऐसे अवधूत जिन्होंने महाराज यदु को ज्ञान दिया। 24 गुरुओं का वर्णन उन्होंने किया और हरेक गुरु से कुछ शिक्षण प्राप्त किया। महाराज यदु को वो समझा रहे थे कि मैं सारी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूँ और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ों से मैं सीख रहा हूँ, जीवन जीने की कला, भगवत भक्ति की कला, इस संसार से परे जाने की कला। तो बहुत से गुरुओं का वर्णन वो करते हैं, जैसे एक अजगर का वर्णन किया, समुद्र का वर्णन किया और फिर उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, जो भक्त है, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, उसे क्या सीखना चाहिए। तो ऐसे कई गुरुओं का वर्णन करते हुए वो एक ऐसे कीड़े का वर्णन करते हैं जो अग्नि की ओर आकर्षित हो जाता है और अग्नि की ओर आकर्षित होने मात्र से वो ये भूल जाता है कि इस अग्नि में जाने से मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वो इतना आकर्षित हो जाता है कि अपनी प्रत्यक्ष मृत्यु को देख नहीं पाता और अग्नि में प्रवेश कर देता है, जिसके कारण स्वाभाविकता उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अवधूत ब्राह्मण समझाते हैं कि इसी प्रकार हम सब इस जगत में हैं। हम सब यहाँ इस मनुष्य देह को प्राप्त करते हैं या अन्य जीव अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं। ये योनियाँ और ये भोग ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए हैं। अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्य करते हैं, भोग के कार्य करते हैं, एक तथाकथित आनंद, एक झूठे आनंद की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। अपनी ही मृत्यु, अपने ही आध्यात्मिक अस्तित्व को मार देते हैं। आध्यात्मिक अस्तित्व कैसे नाश होता है? उपनिषदों में, पुराणों में वर्णन किया गया है कि आध्यात्मिक अस्तित्व भी नाश होता है। वैसे तो आत्मा को अमर कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। लेकिन फिर भी आत्मा को, आध्यात्मिक अस्तित्व को नाश किया जाता है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो आत्मा का हत्यारा है वो ऐसे स्थान पर जाता है जहाँ पर कई कई वर्षों तक उसे कष्ट भोगना होता है। असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनोजना। जो आत्महन हैं, जो आत्मा के हत्यारे हैं, वे ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ सूर्य नहीं है। असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अंधकार से, अज्ञान से आवृत है वो स्थान, भरा हुआ है। ऐसे स्थानों में वो लोग जाते हैं। कौन? ये के कोई भी क्यों ना हो, अगर वो आत्महना, आत्मा का हत्यारा है तो आत्मा की हत्या कैसे होती है? आत्मा की हत्या जीव को या आत्मा को उसकी संवैधानिक स्थिति, मूल स्थिति से अलग रखने से होती है। जैसे हम लोग ये शरीर धारण करते हैं, जीवित होते हैं, तो जीवित होना अर्थात प्राण रहना, लेकिन जब उस स्थिति से अलग कर दिया जाता है तो व्यक्ति को मृत कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा का मूल अवस्था, आत्मा की मूल स्थिति भगवान की भक्ति है। जब उससे अलग किया जाता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। जैसे इस शरीर की मृत्यु होती है, इस शरीर में रहते हुए हम मृत्यु को देखते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी मृत्यु हो जाती है अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते। तो महाराज यदु को ये समझाया कि जैसे वो कीड़ा अग्नि में प्रवेश कर जाता है, हम सब भी अपने अपने कार्यों को करते हुए, समाज में रहते हुए, भोगों के कार्य करते हुए ये भूल जाते हैं कि हम बड़ी तेजी से अपने ही आत्म विनाश की ओर जा रहे हैं। और इसीलिए हम सब के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सब ये जानें कि कैसे इस आत्म विनाश को रोका जा सकता है, कैसे भगवान की भक्ति को बढ़ाया जा सकता है, कैसे उस स्मरण को तीव्र किया जा सकता है जिसके द्वारा कृष्ण की प्राप्ति होती है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि स्मरण भी के द्वारा भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्मरण क्या है? श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि स्मरण ये एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सतत मन में भगवान से अपने संबंध को स्थापित किया जाता है, उसे स्मरण कहते हैं। अर्थात हमारे मन में अभी बहुत सारी और चीजों से हमारा संबंध स्थापित है। मन ही मन में हम अपना संबंध अपने संबंधियों से कर लेते हैं, इस शरीर से संबंधित व्यक्तियों से कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें अपना मानते हैं, मन ही मन। और जब यही मन श्री कृष्ण से अपने संबंध को पुनः स्थापित करता है तो उसे स्मरण की प्रक्रिया कहते हैं। अन्य स्थानों पर कहा गया है, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, किसी न किसी प्रकार से मन में श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना चाहिए। इतना ही नहीं, जीव गोस्वामी स्मरण के विषय में कहते हैं कि स्मरण एक खोज की प्रक्रिया है, एक ढूंढना है। क्या ढूंढना है? श्री कृष्ण को। और कहाँ ढूंढना है? मन में। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब हम अपने मन में ही श्री कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनको खोजते हैं, ये स्मरण की प्रक्रिया है। क्योंकि कृष्ण तो हैं, आत्मा का मूल स्वभाव है भक्ति। और किसकी भक्ति? श्री कृष्ण की भक्ति। तो जब आत्मा के स्वभाव में भक्ति है तो फिर कृष्ण भी हैं, क्योंकि भक्ति और कृष्ण अलग नहीं हो सकते। भक्ति तो केवल कृष्ण की जाती है। तो इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं स्मरण मतलब अपने मन में ढूंढना। और कैसे? क्रमशः, पहले नाम के द्वारा, फिर लीलाओं के द्वारा, फिर रूप के द्वारा, फिर गुण के द्वारा, ऐसे भगवान को ढूंढना अपने हृदय में, इसे स्मरण कहते हैं। वैसे और भी कई व्याख्याएं हैं स्मरण की, कैसे हमें स्मरण करना चाहिए भगवान का, ये हमें जानना है। क्योंकि स्मरण से हमारी श्रद्धा बड़ी तीव्र हो जाती है। जब हम स्मरण करते हैं भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, तो क्या लाभ होता है स्मरण का? अलग अलग पुराणों में बड़े विस्तार से वर्णन है कि स्मरण से क्या होता है। ऐसा बताया गया है कि केवल स्मरण करने मात्र से जितने भी अमंगल हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ पद्म पुराण कहता है कि व्यक्ति जितने भी पाप कर्म हैं उससे मुक्त हो जाता है केवल भगवान का स्मरण करने से। पद्म पुराण में अन्यत्र ये भी लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त का स्मरण करता है तो उसके पुण्य का 100वां अंश उस स्मरण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। देखिए कितनी तीव्र प्रक्रिया है स्मरण की, कितनी शक्तिशाली प्रक्रिया है। स्मरण करने मात्र से ही केवल हम भगवान के निकट जा सकते। प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि केवल स्मरण को तीव्र करके हम एक दिन भगवान को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, इतना शक्तिशाली है ये स्मरण। तो स्मरण से श्रद्धा उत्पन्न होती है, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। और नारद पुराण में भगवान कहते हैं स्वयं कि केवल स्मरण मात्र से व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। ऐसे कई उपनिषदों में, पुराणों में स्मरण का वर्णन किया है। एक उपनिषद में वर्णन किया गया है कि ये जो स्मरण है ये मन के द्वारा भगवान की आराधना का एक रूप है। जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं अलग अलग रूपों में, कभी आरती करते हैं, कभी भोग अर्पण करते हैं, कभी श्रृंगार करते हैं, ये सब आराधना के रूप हैं। तो मन से आराधना की जाती है जब हम स्मरण करते हैं। और इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हम लोग कई बार सुन चुके हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कथा आती है कि कैसे एक बार एक व्यक्ति था जिसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान को अर्पण करना चाहता था। और उसने सुना कि मन में अर्पण कर सकते हैं, तो मन ही मन वो भगवान की बड़े विशाल सेवा किया करता, विग्रह सेवा, सोने के मटकों में अलग अलग नदियों का, पवित्र नदियों का जल लाया करता, भगवान का अभिषेक करता, अच्छे से अच्छे वस्त्र भगवान को अर्पण करता और फिर अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाता, ये सब मन में। लेकिन उसका स्मरण इतना तीव्र था कि मन में करते हुए भी वो पूर्ण रूप से भक्ति के इस कार्य में, आराधना के इस कार्य में पूर्ण रूप से लगा हुआ था। इसीलिए एक समय जब उसने भोग बनाया, खीर बनाई, ये देखने के लिए कि खीर गर्म है या ठंडी, उसने अपनी उंगली उसमें डाल दी और उसकी उंगली जल गई और उसका ध्यान भंग हो गया। और उसने जब अपना हाथ देखा तो सही में उंगली जल गई थी। ये स्मरण है, अर्थात भगवान हमारे स्मरण को स्वीकार करते हैं एक आराधना के रूप में, एक पूजा के रूप में। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि ये आराधना के समान है। नरसिंह पुराण में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल भगवान का स्मरण करता है तो बहुत बड़ा पापी ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपना उद्धार करा सकता है केवल भगवान के स्मरण से। तो ऐसा स्मरण है भगवान का जिसका वर्णन प्रह्लाद महाराज करते हैं। हम लोग जिस चीज का स्मरण करते हैं उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। जितना स्मरण हमारा तीव्र होता है उतनी ज्यादा आसक्ति बढ़ती है। वैसे आचार्यों ने समझाया है कि स्मरण के अलग अलग स्तर होते हैं, हम किस तरह का स्मरण करते हैं उसी तरह हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। पांच स्तरों का वर्णन आचार्यों ने किया है स्मरण का, जहां वो स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुव अनुस्मृति और समाधि का वर्णन करते हैं। सबसे पहले स्मरण का वर्णन करते हैं कि स्मरण क्या है। तो कहते हैं कि किसी भी भगवान के रूप के विषय में खोज करना, ढूंढना, जिज्ञासा करना, ये स्मरण कहलाता है। दूसरे स्तर पर धारणा, जहां हम बाकी सारी चीजों को त्यागते हैं और केवल भगवान का स्मरण करने का प्रयास करते हैं। तीसरा ध्यान, ध्यान मतलब जब भगवान के किसी एक विशेष रूप पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, बाकी अन्य रूपों से हटाकर, वो ध्यान कहलाता है। और फिर चौथा है धारणा, जब ध्यान बहुत तीव्र हो जाता है, क्षमा कीजिए, चौथा है ध्रुव अनुस्मृति, जब ध्यान बहुत तीव्र हो जाता है तो फिर वो ध्रुव अनुस्मृति कहलाता है, जहां वो एक आनंद को प्रदान करता है। और फिर अंतिम अवस्था, पांचवी अवस्था है समाधि। तो स्मरण, धारण, ध्यान, ध्रुव अनुस्मृति और समाधि। समाधि की अवस्था क्या है? जहां भगवान का रूप स्वतः मन में आ जाता है, जहां भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे गोपियां, साधारणतः जब हम लोग समाधि शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे योगी की कल्पना आ जाती है जो आंखें बंद कर अपने शरीर को किसी आसन में लगाकर बड़े ध्यान कर रहा है, उसको समाधि माना जाता है। लेकिन असल दृष्टि में समाधि वो है कि जहां भगवान का रूप स्वतः बिना किसी प्रयास के अनायास हमारे मन में आ जाए, उसे हम समाधि कहते हैं। इसलिए गोपियां ये समाधि की अवस्था में थी, क्योंकि सतत श्री कृष्ण का रूप स्वतः, उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था। वो आंखें बंद कर बैठती नहीं थी कि श्री कृष्ण का स्मरण हो, तो स्वतः उनके मन में ये रूप प्रकट होता था। तो इसलिए ये स्मरण है। अब स्मरण होना चाहिए, स्मरण से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, स्मरण के प्रकार हैं, स्मरण के लाभ हैं। लेकिन स्मरण को तीव्र कैसे करना चाहिए? क्योंकि जितना तीव्र इस स्मरण को करेंगे, उतनी तीव्रता से हम भगवान के निकट जा सकेंगे, बहुत तीव्रता से। जैसे इस जगत में हमारा जितना, जिस वस्तु के लिए स्मरण तीव्र होता है, हम उस वस्तु के निकट पहुंच पाते हैं। जैसे कोई व्यापारी अगर सतत केवल अपने व्यापार के बारे में स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो फिर वो उसको प्राप्त भी कर लेता है। हाँ, कभी कभी इस भौतिक जगत में ऐसा भी होता है कि ऐसी चीजों को प्राप्त करते करते भगवान को हम भूल जाते हैं, और फिर भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे पुनः उनका स्मरण हो जाए। अभी कुछ महीनों पहले ऐसी एक घटना अमेरिका में हुई। एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे और बहुत पैसा कमा रहे थे। बाहर के देशों में कुछ व्यवसायी पैसा बहुत कमाते हैं, और उनमें से एक हैं डॉक्टर्स। तो बहुत पैसा कमाया, बहुत जगह, अलग अलग जगह जाने लगे। पहले केवल अमेरिका में थे, फिर इंडोनेशिया, फिर मलेशिया इत्यादि सब जगहों में जाने लगे, व्यापार फैला लिया। और उनका इतना व्यापार बढ़ गया कि उनके अधीन कई डॉक्टर रहने लगे, और बहुत पैसा। ये सब बातें वो स्वयं अपने एक लेक्चर में, एक भाषण में बताते हैं। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया, और उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, केवल 40 वर्ष के थे। अचानक एक दिन उनको पीठ में कुछ दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ। तो ऐसे ही अपने किसी मित्र के पास, जो भी डॉक्टर था, चले गए कि जरा जांच कर लेते हैं। तो जांच किया, तो जांच जो हुई तो उसमें पता चला कि इनको तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि खुद डॉक्टर हैं। तो उन्होंने फिर से पूरी जांच कराई कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो पूरे शरीर की जांच हुई और पता चला कि इनको तो कैंसर हो चुका है, और वो भी ऐसा कि जो मस्तिष्क तक चला गया है, अब कुछ नहीं कर सकते। स्वयं डॉक्टर हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन जब ऐसी बीमारी पर आए तो कुछ कर नहीं पाए, निस्सहाय हो गए। सारा धन, सारी प्रतिष्ठा, सारी कला वहीं रह गई। तो उन्होंने लोगों के लिए ये बताया, उन्होंने एक लेक्चर दिया और उन्होंने अपनी जीवनी बताई कि कैसे मैं शुरुआत से लेकर मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने अच्छा शिक्षण प्राप्त किया और कैसे कैसे मैं बढ़ाता गया और बहुत ज़्यादा मैं उस पैसे कमाने के चक्कर में लगे। मेरा केवल एक ही ध्यान होता था कि कैसे और बढ़ाना और कैसे करना। लेकिन अब स्थिति में थे कि अब उनकी मृत्यु होने वाली थी और उस पैसे का कोई लाभ नहीं, क्योंकि सारे दुनिया के डॉक्टर मिलकर भी उनको नहीं बचा सकते, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। तो अक्टूबर में इसी वर्ष 2012 अक्टूबर में उनकी मृत्यु हो गई। ये उन्होंने जनवरी में उनको पता चला था और अक्टूबर तक वो रहे और अक्टूबर में मृत्यु हो गई उनकी। तो ये उदाहरण है कि दुनिया का सबसे प्रगत देश अमेरिका और उसके बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर, सारी सुविधाएं, धन, प्रतिष्ठा, लेकिन निस्सहाय, कुछ नहीं कर सके। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हम लोग जो सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं या मैं विजय पा लूंगा, ये संभव नहीं है। इसलिए हमें स्मरण करना चाहिए, स्मरण उस समय का जब हमें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, स्मरण उस समय का जब हमें ऐसी स्थिति में डाला जाएगा जहां बड़ा कष्ट होगा। इसलिए स्मरण को तीव्र करना, स्मरण से श्रद्धा होती है और बहुत से कष्टों से दूर हो जाते हैं। कल एक कार्यक्रम में हम एक कथा सुना रहे थे शिवानंद सेन की, जो चैतन्य चरितमृत में आती है। शिवानंद सेन भगवान के बड़े महान भक्त, चैतन्य महाप्रभु के, हर वर्ष बंगाल से भक्तों को रथ यात्रा के लिए ले जाते थे, करीब 300-400 भक्त, और उनकी सारी व्यवस्था वो करते थे। देखिए कैसी भक्ति थी उनकी। हर वर्ष करीब 20 वर्ष तक उन्होंने ये सेवा की, ले जाते भक्तों को, लेकर आते, और जो भी व्यवस्था बीच में होती वो सब खुद करते। गृहस्थ थे और एक भी भक्त को असंतुष्ट नहीं करते, खुद खर्चा करते, जाना आना रहना। और वो समय था कि जब ऐसा नहीं था कि बहुत आराम से सारी व्यवस्था होती थी, होटल्स थे या लॉजेस थी, कुछ नहीं था। जंगल के रास्ते जाना होता था और दोपहर का समय जब प्रसाद का हो तो जंगल में प्रसाद की व्यवस्था करनी होती थी, रात को रहने की व्यवस्था करनी होती थी, कहाँ करेंगे जंगल में। शिवानंद सेन करते थे अकेले, हरेक के लिए। ये सेवा थी उनकी भगवान के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। एक समय जब शिवानंद सेन पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी नहीं आ पाई, चैतन्य महाप्रभु से कहा, क्योंकि वो संतान को जन्म देने वाली थी, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम परमानंदपुरी रखना। और सही में जब वो वापस आए तो देखा कि पुत्र हुआ था और उन्होंने उनका नाम रखा पुरीदास। तो चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत प्रिय थे। एक समय जब वो जा रहे थे तो एक जगह पर, उस समय भारत एक नहीं था, अलग अलग प्रांत थे, और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने के लिए कर देना पड़ता था। तो शिवानंद सेन सबका कर दिया करते थे जितने लोग थे। तो एक समय एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कर अधिकारी थे, और उस कर अधिकारी ने इस समय हर वर्ष उसको देते थे, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा कर मांगा, इतना कि शिवानंद सेन के पास था ही नहीं। तो शिवानंद सेन ने उनसे प्रार्थना की कि ऐसा तो नहीं है हर बार हम कम देते हैं, आप क्यों इतना ले रहे हैं। तो जब ऐसा कहा तो उसको गुस्सा आ गया और उसने शिवानंद सेन को जेल में डाल दिया। अब सारे भक्त हैरान हो गए, ये क्या हुआ, अभी तो हम रथ यात्रा के लिए जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने, और ये रास्ते में सब ये तो गिरफ्तार हो गए, जेल में डाल दिया, क्या होगा। तो सब लोग प्रार्थना करने लगे भगवान से, लेकिन शिवानंद सेन वो केवल स्मरण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का बारंबार, कि आप ही, आप जो चाहे मेरे लिए ठीक हो वो कीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे कष्ट देने से मेरा शुद्धिकरण होगा, मेरे लिए वो अच्छा है, तो मैं स्वीकार करता हूं, या फिर आपको लगता है कि मेरे, मुझे बाहर निकालने से इन सभी भक्तों को लाभ होगा, तो वो भी मैं स्वीकार करता। शिवानंद सेन ऐसे जेल में थे, रात्रि के समय 12 बजे करीब मध्य रात्रि में सैनिक आते हैं और उनको घसीटते हैं बाहर, चलो कर अधिकारी ने बुलाया है। अब शिवानंद सेन सोचते हैं ऐसी रात्रि के समय, खैर उनको लेके जाते हैं तो देखते हैं कि बीच जंगल में वो अधिकारी बैठा है, और उसके पास करीब 3-4 व्यक्ति बड़े लंबे चौड़े, मानो वो बस शिवानंद सेन का गला काटने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसे हट्टे कट्टे खड़े हैं। तो शिवानंद सेन ने सोचा कि आज तो आखिरी दिन है मेरा, इस कर अधिकारी ने मुझे बुलाया है कि अब ये मेरी हत्या कर देगा, तभी इतने बड़े बड़े लोग ऐसे खड़े हुए हैं उसके साथ में। और वो बैठा था, उसने शिवानंद सेन से पूछा कि एक प्रश्न का उत्तर दो मेरे, जगन्नाथ, मैं जगन्नाथ का भक्त हूं, उसने कहा पहले, मैं जगन्नाथ का भक्त हूं, तो तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, जगन्नाथ श्रेष्ठ है या चैतन्य। अब शिवानंद सेन बड़े दुविधा में थे, दुविधा में तो नहीं थे, हम लोग होते तो दुविधा में पड़ जाते। आप सोचिए, आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है जिसके आसपास 4-5 हट्टे कट्टे लोग बस आपको मारने के लिए तैयार खड़े हैं, और वो कहता है मैं जगन्नाथ का भक्त हूँ, कौन श्रेष्ठ है बताओ, जगन्नाथ या चैतन्य। हम लोग क्या कहते, हम लोग कहते आप जो कहे वो सही है, अगर आप कहेंगे कि जगन्नाथ से आप श्रेष्ठ हैं तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। शिवानंद सेन ने कहा चैतन्य महाप्रभु। हालांकि शिवानंद सेन ने सुना था कि अभी अभी उसने कहा कि मैं जगन्नाथ का भक्त हूं, लेकिन फिर भी शिवानंद सेन ने श्रद्धा रखी, उनका स्मरण इतना तीव्र था कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी, वो तो उस समय भी चैतन्य महाप्रभु का संग कर रहे थे। तो शिवानंद सेन ने कहा चैतन्य महाप्रभु, वैसे एक दृष्टि से दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी मंदिर में रहते हैं, साल में एक वर्ष में बाहर आते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो देखो हर गली में, हर गांव में, हर शहर में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं हमारे उद्धार के लिए, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। तो उस कर अधिकारी ने कहा बहुत अच्छा, मैं यही उत्तर सुनना चाहता था। तो उसने बताया कि मैंने तुम्हें रात को क्यों बुलाया जानते हो। शिवानंद सेन ने कहा नहीं, मैं सो रहा था, मुझे स्वप्न आया, मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव जगन्नाथ जी आए स्वप्न में, उनकी आंखें लाल लाल थी क्रोध से, और उन्होंने मुझे कहा कि शिवानंद मेरा भक्त है, कैसे तुमने उसको दंड दिया है, तुरंत छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा, तो इसीलिए मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। तो जो कर पहले लिया था वो कर वापस दे दिया, एक भी व्यक्ति का कर नहीं लिया, और ऊपर से थोड़ा डोनेशन भी दे दिया, रख लो आप, घबरा गए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा, ये श्रद्धा, ये स्मरण, क्योंकि सतत वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। तो ये स्मरण को तीव्र करने का क्या मार्ग है? स्मरण को तीव्र करने के कई मार्ग हैं, जिनमें से एक मार्ग है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधारणतः लोग ये समझते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, ये प्रभुपाद ने या गौड़ीय वैष्णवों ने, ये हरे कृष्ण वालों ने इसको शुरू कर दिया है। इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है, ये इतना कोई महत्व नहीं है, ये केवल ये हरे कृष्ण वाले बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं महामंत्र। लेकिन ऐसा नहीं है, कई पुराणों में इस महामंत्र का वर्णन है। कुछ को हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। यजुर्वेद का एक हिस्सा है कली संतनर उपनिषद, जिसमें ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, यही केवल कली के कलमश का नाश करता है। बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा, नारद मुनि ने प्रश्न किया था कि इस कलयुग में कैसे उद्धार होगा, तो उन्होंने बताया कि केवल इसी के द्वारा। अग्नि पुराण में इस महामंत्र का वर्णन हुआ है। अग्नि पुराण में लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और आगे वो लिखते हैं रतंति हलय वापी ते कृतार्थ न संशयः। अग्नि पुराण में लिखा है कि जो इस मंत्र का जाप करता है, बड़ा स्पष्ट पहले मंत्र लिखा और फिर कहा रतंति ते हलय वापी, जो इस मंत्र का जाप करता है कृतार्थ न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मुक्त होगा। विशेषतः इस कलयुग के लिए वर्णन किया गया है, तो अग्नि पुराण भी ये वर्णन करता है। पद्म पुराण में भी वर्णन आता है हरि नाम महामंत्रेर नश्य पाप पिशाचनम। पद्म पुराण कहता है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरि नाम महामंत्र जिसको चैतन्य महाप्रभु ने दिया गोलोक का धन, तो ये हरि नाम महामंत्र जो भी उच्चारण करता है, हरि नाम महामंत्रेर नश्य पाप पिशाचनम, ये जो पाप बहुत बड़े बड़े भी अगर पाप हों, पिशाचों की तरह बड़े बड़े, नश्यत केवल इस हरि महामंत्र, हरि नाम महामंत्र से। देखिए शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है महामंत्र। लोग कहते हैं कि नहीं, केवल ये गौड़ीय वैष्णवों ने दे दिया, ये केवल ये मंत्र नहीं है, जपना नहीं चाहिए इत्यादि। पुराणों में तो बड़ा स्पष्ट लिखा है कि इसका जप होना ही चाहिए। और एक पुराण है या शास्त्र का हिस्सा है अनंत संहिता, इसमें बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है और कई बार इस महामंत्र का उसमें वर्णन हुआ है। और ऐसे ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ ये कहते हैं अनंत संहिता में कि किसी भी व्यक्ति को इस हरे कृष्ण महामंत्र को त्यागना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में, कोई और शुद्धिकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। बहुत स्पष्ट लिखा है कि इस कलयुग में कोई और शुद्धिकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी अन्य बाबा तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई दोष दूध करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कई बार होता है, जब तकलीफें होती हैं तो फिर हम सोचने लगते हैं कि हम यहाँ चले जाएं, थोड़ा वो झाड़ फूक करा लें, कोई भूत चढ़ गया है या किसी ने कुछ कर दिया है, दोष निकाल दें, ये दोष वो दोष। और फिर कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं अरे आपका तो पूरा कुंडली ही खराब है, दोषों से भरा हुआ है, अगर आप ये हवन नहीं करोगे तो ऐसा होगा, वो हवन करोगे तो ये। तो हम लोग भी विचलित हो जाते हैं कि ठीक है करा ही लेते हैं, सब दोष समाप्त हो जाएंगे। अनंत संहिता में कहा है कोई आवश्यकता नहीं है किसी और शुद्धिकरण की प्रक्रिया की या किसी और मार्ग की। बड़ा स्पष्ट केवल हरे कृष्ण महामंत्र, और ये महामंत्र लिखा है पूरा। तो ऐसा जो भ्रम है लोगों का कि ये चैतन्य महाप्रभु ने केवल दे दिया अपने मन से, ये भ्रम है। और अगर दे भी दिया चैतन्य महाप्रभु ने तो भगवान है, भगवान की वाणी वेद है, भगवान की वाणी धर्म है। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं भी मानते वे लोग, विरोध भी करते हैं, तो भी शास्त्रों को अगर मानते हैं तो शास्त्र में वर्णन है। वैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी तो शास्त्र में है। कुछ लोग हैं जो शास्त्र मानते हैं चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, शास्त्र में ही वर्णन है कि वो स्वयं भगवान है, वही कृष्ण है, और शास्त्र में ही इस महामंत्र का भी वर्णन है। तो इसलिए ये जो महामंत्र है ये हमारे स्मरण को बड़ा तीव्र करता है। बहुत शक्तिशाली मार्ग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम सबको प्रदान किया गया है, जो छुपा हुआ था शास्त्रों में, चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रदान किया। बड़ा सरल और बड़ा शक्तिशाली मार्ग महामंत्र। और ये महामंत्र क्या है? ये केवल एक प्रार्थना है, ये प्रार्थना है भगवान की शक्ति से, भगवान से। वैसे इस महामंत्र के कई अनुवाद और कई परिभाषाएं आचार्यों ने दी हैं, जहां एक एक शब्द को बड़ी अच्छी तरह से अलग अलग रूपों में समझाया है। लेकिन मूल बात यह है कि हम इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी हरा जो भगवान की शक्ति हैं, उनसे कि हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे भगवान की सेवा में लगाइए। तो ये महामंत्र है, ये एक प्रार्थना है। और केवल इस प्रार्थना के द्वारा, श्रील प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हमारा स्मरण बड़ा तीव्र हो सकता है। हम स्मरण को बहुत तीव्र कर सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। हमारा मन वश में नहीं है इसीलिए कृष्ण की ओर जाता नहीं है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अगर हमें मन को वश में करना है तो अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को पुनर्जागृत करना चाहिए, वो आध्यात्मिक बुद्धि जो श्री कृष्ण को समर्पित है। अभी जो हमारी बुद्धि है उसमें हम विवेक बुद्धि को खो चुके हैं, क्या सही है क्या गलत है हम नहीं जानते। हमें जो दिखाई देता है, जो आकर्षित करता है, जैसे उस कीड़े को अग्नि आकर्षित करती है, वो प्रवेश कर जाता है, सही है गलत है नहीं सोचता। ऐसे ही हमें जो दिखाई देता है हम उसके में प्रवेश कर देते हैं, सही गलत को सोच नहीं पाते। और ऐसी अवस्था में ही हम आत्मा को भगवान से दूर ले जाते हैं। मन को वश में ना कर पाना ये एक साधारण व्यक्ति के लिए तो संभव है ही नहीं, मन को वश में कर नहीं पाता। लेकिन बड़े बड़े योगी भी मन को वश में नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या है, मन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि मन ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हम सबके दो शरीर हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और इसको सूक्ष्म तरीके से ही वश में किया जाता है, स्थूल तरीके से नहीं। और सूक्ष्म तरीका है भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हमारा स्मरण बढ़ सकता है भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा। सतत नामों का उच्चारण करना चाहिए। वैसे भी हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है, हम चुप तो रहते नहीं हैं। तो अगर बोलना ही है तो श्री कृष्ण का विषय बोलें, स्मरण करना है श्री कृष्ण का करें। इससे समाज की बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आज जो हम लोग समाज में देख रहे हैं, कहीं पर कुछ गलत कार्य हो रहे हैं, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें। इसका आधार क्या है? श्री कृष्ण को भूल जाना, क्योंकि हम भूल चुके हैं उनको, इसीलिए इन चीजों में हम बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला जप भगवान के नाम का, दूसरा श्रवण। आचार्य समझाते हैं कि श्रवण करना भी स्मरण का ही हिस्सा है, क्योंकि जब हम सुन रहे हैं तो श्रवण करते करते स्मरण हो रहा है। जैसे कृष्ण की कथा सुने कि किस प्रकार कृष्ण ने पूतना का वध किया, किस प्रकार यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया, किस प्रकार दो वृक्ष उखड़ गए और उन्होंने प्रार्थना की, वहां से देवता निकले, या किस प्रकार कृष्ण ने बड़ी सरलता से कई असुरों का वध किया, किस प्रकार कृष्ण गायों को चराने ले जाते थे, ये सारे श्रवण मात्र से ही स्मरण बढ़ जाता है। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत का वर्णन कर रहे थे, तो उस समय उनका स्मरण परीक्षित महाराज का इतना तीव्र हो गया कि उन्हें न भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद आई, केवल कृष्ण का स्मरण, और तीव्रता बढ़ रही थी, और बताइए और बताइए। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो भगवान की लीलाओं में बहुत आनंद लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु भागवत से एक ही कथा, ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा कई बार सुनते थे, वही कथा हम लोग भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं आता। एक दो बार सुनने के बाद जब तीसरी बार सुनते हैं तो हमें लगता है पता है आगे क्या होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु बार बार वही कथा सुनते, आनंद बढ़ जाता। तो श्रवण, परीक्षित महाराज जब श्रवण कर रहे थे तो उनकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी कि और बताइए। इसीलिए भक्त ऐसा कहते हैं, विदुर मैत्री मुनि से कहते हैं, क्रीडन विदत्ते द्विजगो सुराणा क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्त्यत्यपि शृण्वतामनां सुश्लोक मौले श्वरितामृतानि। वो कहते हैं कि क्रीडन विदत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे। आप रुकिए नहीं, आप बताइए भगवान के अलग अलग अवतार हुए, उन्होंने क्या क्या किया। मनो न तृप्त्यति शृण्वताम नाम, सुनकर मन तृप्त नहीं हुआ है और ना ही होगा, इसलिए आप बताते जाइए। सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि, भगवान की कथाएं अमृत के समान है। तो इससे, सुनने से हमारा, जैसे हम लोग अभी बैठकर सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत तो कृष्ण का स्मरण होता है। शिवानंद सेन की कथा सुनी तो स्मरण हुआ, कैसे वो गए होंगे, कैसे तकलीफें हुई होंगी, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे आदान प्रदान किया होगा, स्मरण बढ़ गया। इसीलिए सुनना ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जप करना, इससे स्मरण बढ़ता है, फिर सुनना श्रवण करने से, और तीसरा जब हम भगवान के मंदिर आते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, तो वहाँ प्रणाम करने से। आचार्य समझाते हैं कि जब हम प्रणाम करते हैं तो स्वाभाविक है कि भगवान का स्मरण बढ़ता है। किसको प्रणाम कर रहे हैं हम जानते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं, खास करके हम लोग देखते हैं कि जब लोग मंदिर आते हैं, भगवान के सामने आते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते हैं मतलब स्वाभाविक है कि वो जान रहे हैं कि ये भगवान हैं, और फिर उनकी लीलाओं का थोड़ा बहुत तो स्मरण हो जाता है। जैसे अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के मंदिर आता है, पहली बार आया है, सामने देखता है, हाथ जोड़ता है, तो उसको स्मरण आता है कि वही कृष्ण है जिन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, ये वही कृष्ण है जिन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया, ये वही कृष्ण है जिन्होंने माखन चुराया, स्वाभाविक है, हो जाता है, तो प्रणाम कर देता है। तो प्रणाम करने से भी हमारा स्मरण बढ़ जाता है। तो देखिए, केवल भगवान के नाम का जप करने से, भगवान की कथाओं को सुनने से, भगवान के मंदिर में या भगवान के धाम में जाकर प्रणाम करने से, जैसे हम लोग जब धाम में जाते हैं तो हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ हर जगह पे हम प्रणाम करते हैं। धाम में जब लोग जाते हैं तो चलते चलते पहले उतर कर धाम को प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करने से क्या होता है, हम क्या सोच रहे हैं, ये कृष्ण का धाम है, कृष्ण ने यहाँ लीला की थी। फिर हम लीला स्थलियों पे जाते हैं तो अरे कृष्ण यहाँ खेल रहे थे, रमन रहती है, तो हम लोग भी वहाँ पर प्रणाम कर देते हैं। तो लीलाओं का स्मरण बढ़ जाता है और अंततः सेवा से, जब हम सेवा करते हैं, जैसे अगर कोई भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो उनका स्मरण होता है कि भगवान इसको ग्रहण करने वाले हैं। कोई हार बना रहे हैं तो उनका स्मरण होता है ये हार बैठेगा कि नहीं, कि कृष्ण को स्मरण हो जाता है कृष्ण का। ये अन्य कोई भी सेवा, हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें स्मरण होता है कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के गुण का। तो ये बड़ी शक्तिशाली विधियां हैं जिनके द्वारा हम श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, स्मरण। इसीलिए हमें स्मरण को तीव्र करना चाहिए, हमारे मन से बाकी चीजों के स्मरण को बाहर करना और श्री कृष्ण के स्मरण को बढ़ाना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारे जीवन में अभ्यास होना चाहिए। पहले अभ्यास होता है फिर मनन होता है। हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं, जैसे महामंत्र जप करने का अभ्यास, फिर जपते जपते हमारा मनन शुरू होता है कि ये क्या है महामंत्र, इसका क्या लाभ है, इसका क्या अर्थ है, ये मनन शुरू हो जाता है। तो पहले अभ्यास होता है फिर मनन होता है और फिर स्मरण आता है श्री कृष्ण का। तो इसलिए जीवन भर हमें महामंत्र जप करने का अभ्यास करना, कृष्ण कथा को सुनने का अभ्यास करना, कृष्ण को प्रणाम करने का अभ्यास करना और कृष्ण की सेवा, अगर ये चारों चीजें हम अपने जीवन में करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान को प्रणाम और फिर भगवान की सेवा, इससे कई गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। जैसे भगवान को प्रणाम करने से हम नम्र हो जाते हैं, हमारे हृदय में एक भावना आती है कि हमारा कोई स्वामी है, इसलिए नम्रता आ जाती है, हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते। प्रणाम किसे करा किया जाता है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को। तो जब हम प्रणाम करते हैं तो ये जान लेते हैं कि मेरा भी कोई स्वामी है, इसलिए नम्रता आ जाती है हृदय में। श्रवण जब करते हैं तो भगवान की कथाओं का जो ज्ञान अंदर जाता है उससे हमारे हृदय में जो गांठें पड़ी हुई हैं, कर्म ग्रंथियां भागवत में वर्णन करते हैं, वो कट जाती हैं जब हम श्रवण करते हैं। केवल श्रवण करने से हो सकता है हमें आनंद आए या ना आए, लेकिन श्रवण करते रहेंगे तो ये कर्म ग्रंथियां कट जाएंगी। श्रवण करने से कर्म ग्रंथियां कट जाती हैं, प्रणाम करने से व्यक्ति नम्र हो जाता है, सेवा करने से स्वार्थ भावना चली जाती है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो जो हृदय में स्वार्थी भावना है, केवल अपने लिए करने की भावना, वो चली जाती है। क्योंकि सेवा से प्रत्यक्षतः तो कुछ लाभ नहीं होता, हमें कोई धन नहीं मिलता, हमें कोई बहुत बड़ी पदवी नहीं मिलती। हम सेवा करते हैं, भगवान का मंदिर मार्जन करते हैं, भगवान के लिए कुछ फल फूल लेकर आते हैं, भगवान के लिए हार बनाते हैं, भोग बनाते हैं, प्रचार करते हैं, जो भी सेवाएं हैं, बहुत सी सेवाएं हैं भगवान के लिए। तो इन सब सेवाओं को करने से स्वार्थ भावना समाप्त हो जाती है हृदय से। हमारा सारा अस्तित्व, भौतिक अस्तित्व, ये स्वार्थ पर ही निर्भर है। हम स्वार्थी हैं, सही दृष्टि में स्वार्थी नहीं है, क्योंकि स्व मतलब आत्मा और अर्थ मतलब उसका लाभ। तो स्वार्थी वो व्यक्ति है सही दृष्टि में जो आत्मा के लाभ के लिए कार्य करे। लेकिन अभी हम लोग स्व मतलब शरीर मानते हैं, इसीलिए स्वार्थी हैं, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हृदय से स्वार्थ चला जाता है। प्रणाम करने से नम्रता आती है और भगवान के नाम का जप करने से, जैसे हमने बताया पुराणों में वर्णन है, हमारे कई कई जन्मों के कर्म का नाश हो जाता है, जितने भी अमंगल हैं उसका नाश हो जाता है, पापों के फलों का नाश हो जाता है। बड़ा शक्तिशाली है ये हरि नाम, और इतना ही नहीं आत्मा को पोषण प्रदान करता है, और फिर हमारी आध्यात्मिक बुद्धि को बल मिलता है, जिससे हम मन को वश में करते हुए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इन चार चीज़ों के द्वारा भगवान के स्मरण को बढ़ाएं, भगवान के नामों का सतत उच्चारण करें, भगवान को आकर प्रणाम करें, भगवान की कथाओं को सुनें, और साथ ही साथ भगवान की सेवा में लगें, तो निश्चित है कि हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं भगवान नाम के जप के विषय में या भक्ति के विषय में? कोई भी प्रश्न हो किसी का?
हरे कृष्ण। जैसे कि पुराण बताया, पद्म पुराण बताया कि शुद्धि के लिए दूसरी कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है,
अनंत संहिता।
तो फिर भी आप देखते कि हम यज्ञ करते हैं, इसका क्या कारण है? पर्याप्त है, जैसा महाप्रभु बताया कि इस युग में हरिनाम ही पर्याप्त है, तो यज्ञ की आवश्यकता तो नहीं है वैसे तो।
एक दृष्टि से तो यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यज्ञ किए जाते हैं केवल गंभीरता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूर्ण रूप से हरि नाम को समर्पण नहीं किया है या उसके महत्व को नहीं समझे हैं। जिस दिन हरि नाम के महत्व को समझ गए और कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध स। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो केवल एक ही यज्ञ करे, हरि नाम। लेकिन क्योंकि हमें अभी पूर्ण विश्वास नहीं है हरि नाम पर, इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं, और यज्ञ इसलिए भी किया जाता है कि थोड़ी बहुत गंभीरता आती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी संस्था में हम लोग दीक्षा यज्ञ करते हैं, वैसे उसमें कुछ नहीं है, केवल हम मंगलाचरण कहते हैं, आचार्यों के नामों का उच्चारण करते हैं, और कुछ नहीं है उसमें, कोई ऐसा बहुत बड़ा यज्ञ नहीं है। लेकिन अग्नि जलने से, थोड़ी व्यवस्था करने से व्यक्ति उसको गंभीरता से ले लेता है। वैसे तो दीक्षा तभी पूर्ण हो जाती है जब गुरु एक नाम दे देता है और माला दे देता है, वो दीक्षा पूर्ण है। लेकिन केवल उसमें गंभीरता लाने के लिए फिर यज्ञ किए जाते हैं, पंडित पुजारी बैठते हैं, अग्नि में डाला जाता है। वैसे यज्ञ इस युग के लिए नहीं है, यज्ञ तो पूर्व युगों में हुआ करते थे, क्योंकि अब हमारे अंदर वो यज्ञ करने की शक्ति भी नहीं है। तो इसीलिए अब जो यज्ञ किए जाते हैं केवल इसलिए कि थोड़ा जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसको लोग गंभीरता से लें। लेकिन अगर हमारे हृदय में पूर्ण श्रद्धा है केवल हरि नाम के प्रति, तो यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नहीं है अभी उतना, हमारे समर्पण नहीं है, उतना विश्वास नहीं है, इसलिए अन्य क्रियाओं को भी करते हैं। और आजकल तो ये एक कारण है, लेकिन आजकल कुछ फैशन हो गया है कि कुछ भी करना है तो यज्ञ हुआ नहीं तो पूर्ण नहीं होगा। ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं है कि यज्ञ ना करने से। हाँ, वेदों में, शास्त्रों में यज्ञों का वर्णन हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत चीजें हैं, यज्ञ करना मनगढ़ंत है, ऐसा नहीं है। शास्त्र बतलाते हैं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र तो कई सारे कर्मकांड भी बतलाते हैं, हम वो तो नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये शास्त्र के अनुसार है, ये सही है, लेकिन इस समय में इसकी आवश्यकता इतनी नहीं है। मगर आजकल एक ये फैशन बनता जा रहा है कि हर जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो वहाँ एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए इत्यादि। हाँ, कुछ यज्ञ आवश्यक होते हैं, जैसे जब हम भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, तो उस समय पर यज्ञ बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है भगवान के भगवान को आह्वान करने के लिए। तो ऐसे यज्ञों की आवश्यकता है अभी भी अगर हम विग्रह स्थापित करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, लेकिन अन्य किसी यज्ञ के लिए हमें कोई इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हरि नाम से हमारा विश्वास उठ जाता है। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने नरसिंह यज्ञ कराया, हमने ये यज्ञ कराया, तभी सब ठीक होगा। हरि नाम पूर्ण नहीं है, तो हमें तो ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि हरि नाम ही पूर्ण है। एक ही यज्ञ करना चाहिए। आपके घर नया घर बनाया, हरि नाम कीजिए। आपके यहाँ कोई अन्य कार्य है, हरि नाम कीजिए। संतान उत्पत्ति हुई, हरि नाम कीजिए। विवाह है, हरि नाम कीजिए। वैसे विवाह में ज्यादा हरि नाम करना चाहिए, लोग करते नहीं है, वो दूसरा नाम चलता है, बड़े बड़े स्पीकर लगा के। तभी हम कुछ समय पहले एक भक्त से कह रहे थे, उनका विवाह होने वाला है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप आइए विवाह में। हमने कहा हम लोग विवाह में नहीं जाते। तो आप रिसेप्शन पे आइए। हमने कहा रिसेप्शन पे भी नहीं जाते। तो उसने कहा लेकिन आपको तो आना है। तो हमने कहा तो एक शर्त है। तो उन्होंने कहा क्या? हमने कहा आप अपना रिसेप्शन ऐसे करें जैसे हम बताएं। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप कहेंगे करेंगे। तो हमने कहा कि रिसेप्शन जनरली क्या होता है, वो दो लोग खड़े रहते हैं स्टेज पे, लाइन लगती है, वो आते हैं और खा पी के चले जाते हैं, ख़त्म हो जाता है सब। हमने कहा रिसेप्शन ऐसा करो कि सब लोगों को कार्ड बांटो कि रिसेप्शन मंदिर में है, और जब सब आए तो उनको कथा सुनने के लिए बिठा दो, और सब लोग कथा सुने, आप सबसे आगे बैठकर कथा सुनना दोनों। और जब सारी कथा हो जाए उसके बाद कीर्तन हो और प्रसाद का वितरण हो और सब घर चले जाए। ऐसा रिसेप्शन करोगे तो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो वो तो कुछ नहीं, सत्संग कार्यक्रम हो जाता। तो वैसे ऐसे अवसरों पर हमें यज्ञ से ज्यादा हरिनाम का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ माता जी, माइक पीछे लीजिए।
हरे कृष्ण,
नामाभास
का मतलब क्या है? जब नाम
लेते
समय वो
नामाभास, ये नाम उच्चारण की एक अवस्था है। आचार्यों ने दो अवस्थाओं का वर्णन किया है नाम के उच्चारण में। एक जहां हम अपराध के साथ नाम लेते हैं, और दूसरा जहां हम शुद्ध नाम लेते हैं। ये दो ही अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन एक ऐसी अवस्था इसके बीच में उन्होंने वर्णन किया है जो न शुद्ध नाम की है और ना नाम अपराध की है। इसे नामाभास कहते हैं, अर्थात वो शुद्ध नाम जिसे हम प्राप्त करने वाले हैं उसका आभास मात्र होता है केवल हमें कि वो शुद्ध नाम क्या है। अभी हमें शुद्ध नाम प्राप्त नहीं हुआ हमारा शुद्धिकरण, लेकिन फिर भी हम जप जप करते हैं तो बिना अपराध के करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जप करने में 10 अपराधों का वर्णन हुआ है, तो जब हम वो अपराध ना करते हुए जप करते हैं, अर्थात अपराध मुक्त जप, उसे नामाभास की अवस्था कहते हैं। और इसका उदाहरण भागवत में अजामिल की कथा में आता है। अजामिल ने जब भगवान का नाम पुकारा तो बिना अपराध के था, इसीलिए विष्णु दूत उसको बचाने के लिए आए, लेकिन फिर भी वो मुक्त उस समय नहीं हुआ। उसके 20 साल बाद मुक्त हुआ। उसको जाकर तपस्या करनी पड़ी, भगवान का नाम लेना पड़ा, शुद्ध होना पड़ा, तब हुआ। तो नामाभास अवस्था से प्रभुपाद समझाते हैं कि जब हम नाम लेते हैं भगवान का अपराध युक्त, अपराध के साथ, तो हमें भौतिक फलों की प्राप्ति होती है। जैसे हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, कुछ धन चाहते हैं, कुछ प्रतिष्ठा चाहते हैं, और जब कर रहे हैं तो मिल जाएगा। अपराध भी करते रहिए, जब भी करते रहिए, आपको मिल जाएगा, क्योंकि भगवान कहेंगे यहीं रहना है तो यहीं रहो। लेकिन अगर नामाभास अपराध मुक्त हम नाम लेते हैं तो इससे मुक्ति तक प्राप्त हो सकती है। लेकिन शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो नामाभास की अवस्था वो अवस्था है जहां अभी शुद्ध नाम नहीं लिया और अपराध करना भी बंद कर दिया। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब कुछ सूचनाएं होंगी, उसके बाद फिर कीर्तन और प्रसाद।
सरस्वती रिसेप्शन डे, व्हाट इज द प्रोग्राम शेड्यूल?
12 बजे से कार्यक्रम होगा पुष्पांजलि और